ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग शांत बैठे हुए। एक बार पुकारिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत जन्मों के बाद, अलग अलग योनियों में कष्ट काटने के बाद जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बहुत प्रयास के बाद, बहुत ही कष्ट होने के बाद, बहुत दुख भोगने के बाद में ये बहुत ही मूल्यवान मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भगवान ने हमको दी है। इसमें हम बोल सकते हैं, जानवर बोल नहीं सकता है, इसमें गा सकते हैं, नाच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई है, अच्छे अच्छे औजार हम निर्माण कर सकते हैं, हवाई जहाज बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, मोबाइल बनाया है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंची देन जो है इसके अंदर, ये सभी जो बुद्धि की प्राप्तियां हैं, सभी रिसर्च है, संशोधन है, सबसे आगे जो प्राप्ति है वो है भगवान को समझने की शक्ति, जो किसी भी योनि में प्राप्त नहीं है। समुद्र में मछली तैर सकती है बहुत बढ़िया से, आकाश में पंछी उड़ सकता है, लेकिन दोनों को भगवान को जानने की शक्ति नहीं है। तो आकाश में ना उड़ने पर भी और समुद्र में ना तैरने पर भी मनुष्य को भगवान को जानने की शक्ति प्राप्त करती है। ये सबसे बड़ी भेंट है हमारे लिए भगवान की। अनंत जन्मों तक उनको भूलकर, अनंत जन्म और अनंत योनियों में घूमने के बाद ये मौका मिलता है उनको समझने का, वो समझने की सुविधा वो दे देते हैं। लेकिन मनुष्य कैसा है, वो सोचता है कि जो प्राणी जन्म में न भोग सके उसको मनुष्य जन्म की बुद्धि को लेकर अच्छी तरह से भोगना चाहिए। जो सुविधा उसमें नहीं थी भोगने के लिए, वो बढ़िया तरीके से अभी कैसे भोग लिया जाए, इसलिए इस बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी बुद्धि उस भोग के लिए पर्याप्त जरूरत नहीं होती। जो चींटी की भी बुद्धि है, जो कुत्ते की बुद्धि है, जो पंछी की बुद्धि है, जो मछली की बुद्धि है, वो भी शरीर का भोग करने के लिए पर्याप्त है। इतना सारा जो बुद्धि दिया है, वो जो सबसे महान भक्ति है उसको समझने के लिए इतनी सारी बुद्धि दी गई है। हाँ, हमारे मेडिकल में बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, हाँ 15-15, 20 किलो की किताब होती है, उसमें 1000-1500 पन्ने होते हैं। और हमारा ये अनुभव है कि उतने सारे किताब पढ़ने के लिए लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बुद्धि की जरूरत होती है, तब उसको समझ पाएगा आदमी, उसको उतार पाएगा, जीवन में उसका उपयोग कर पाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति मार्ग में आने के बाद हमको ये अनुभव हुआ कि भगवान के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको समझना, उसको समझने के लिए उससे भी कई गुना अधिक बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए। तब जाके समझता है व्यक्ति तो भगवान क्या है और उनके गुण क्या है, उनकी लीला क्या है और भगवान का तत्व क्या है और कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ लोग सोचते होंगे अरे इतने सारे किलो फूल लाए और वो एक मूर्ति पर फेंक दिए, इतना वेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं ये लोग यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, उसमें कितना हरा घी डालते हैं उसके अंदर, कितना सारा लकड़ी जला देते हैं, सब वेस्ट है। जब तक हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं है तब तक ये सब वेस्ट है। जिस दिन जानकारी होती है तो समझता है ये बहुत कम है उनके लिए, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के जो लोक में हम रहते हैं जो जिसको हम जानते हैं वो जानते हैं जानते भी नहीं है, लेकिन जो अपना लोक है उसके ऊपर भी बहुत लोग है, उसके नीचे भी बहुत लोग है। सूर्यमाला कहते हैं उसको, और ऐसी एक सूर्यमाला नहीं है, ऐसे अनंत सूर्यमालाएं हैं, हमने भूगोल में पढ़ा था। ऐसी अनंत सूर्यमाला है ब्रह्मांड में और अवकाश में घूम रहे हैं, कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, आराम से घूम रहे हैं। हाँ दिन रात समय पे आ रहे हैं, ऋतु समय पे आ रहे हैं, वर्षा समय पे हो रही है, ठंडी समय पे आ रही है, गर्मी समय पे आ रही है, धान्य निकल रहे हैं, हाँ हवामान अपने मर्जी से अच्छी तरह से एक साइकिल में अच्छी तरह घूम रहा है। सारा जो आसमान सारा जो अवकाश सारी सूर्यमालाएं सारे ब्रह्मांड की जो योजना है उसके मालिक भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम। और साथ साथ इस सभी सूर्यमालाओं में जो जो व्यवस्थाएं हैं उसके भोक्ता भी वही हैं, एंजॉयर, वो सब उनके आनंद के लिए उन्होंने बनाया है। जैसे कोई धनी आदमी होता है उसका हेलीकॉप्टर होता है, एक बोट भी होती है समुद्र में खड़ी, हाँ एक चार चार्टर विमान भी होते हैं, और एक अमेरिका में बंगला होता है, एक इंग्लैंड में होता है, एक यूरोप में होता है, एक भारत में होता है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, एक आइलैंड पे एक उसका घर होता है। सब क्यों बनाया है? उसके आनंद के लिए बनाया है, अपने धन से अपने आनंद के लिए सब व्यवस्था बनाई उसने। वो तो दुनिया के अमीर लोग हैं, लेकिन भगवान जो है सबके मालिक है, सबका स्रोत है, सबके उगम है। और इतना बड़ा व्यक्ति होने पर भी सूरदम सबके मित्र है, सबसे गरीब आदमी के भी मित्र हैं, मछली के भी मित्र हैं, पंछी के भी मित्र हैं, मनुष्य के भी मित्र हैं, देवताओं के भी मित्र हैं। सूरदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं देवता से लेकर चींटी तक सबके वो मालिक हैं, सबके निर्माण करता है और सबके मित्र भी हैं। ये जब हम जान जाते हैं तो ज्ञातवा माम शांति मुच्यते, ऐसे ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। जब तक उसको यह पता नहीं है ये सब चीज के भोक्ता भगवान है, तब तक वो साथ सब क्या समझेगा, ये सब चीज का भोक्ता मैं हूं ये सब मेरे लिए बनाया गया है, ये सब मुझे मिलना चाहिए। ये कंस है ये रावण है वो क्या सोचते हैं, ये सब मेरा होना चाहिए, जो दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु है वो सब मेरी होनी चाहिए। अगर रंभा बहुत सुंदर है तो वो मेरी होनी चाहिए, अगर सीता बहुत सुंदर है तो भी मेरी होनी चाहिए, हाँ अगर मेनका बहुत सुंदर है तो भी मेरी होनी चाहिए, अगर वेदवती बहुत सुंदर है वो भी मेरी होनी चाहिए। जो भी अच्छा है, जो भी चमकदार है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी भोगने लायक है, वो सब मेरा होना चाहिए। इस भावना से कंस प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, रावण प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और आगे जाकर उसका सर्वनाश भी होता है, क्योंकि असली भोक्ता वो नहीं है, असली भोक्ता भगवान है। तो जब हम ये समझ जाते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि यहाँ के फूल, यहाँ के फल, यहाँ का धान्य, यहाँ का संपत्ति, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का जितना रिसोर्स है, जितना साधन है, वो सब उनके लिए है। और जब वो उनके लिए लगाया जाता है तो सबसे पहले हमारे हृदय में शांति उत्पन्न होती है। जो उद्वेग है ना, उद्वेग, हम सब लोग उद्विग्न हैं, त्रस्त हैं, तड़प रहे हैं, किसी को धन नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही है, किसी को बीमारी है, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को क्या 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 क्या, 50,000 अनंत कष्ट इस दुनिया में है। भूकंप में किसी का मृत्यु हो गया है, किसी का बॉम्ब ब्लास्ट में हो गया है, किसी का आत्महत्या से हो गया है, किसी का बलात्कार से हो गया है, किसी का किस चीज़ से हो गया है, पता नहीं अनंत कारण है इसके। सब लोग किसी ना किसी कारण से त्रस्त है दुनिया में, किसी को पीठ का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है, किसी को अल्सर का दर्द है, किसी को लीवर का दर्द है, किसी को हार्ट में पेन है, कहाँ कहाँ ध्यान रखें हम लोग। हाँ, आग से खाई में, खाई से आग में, खाई से कुएं में, कुएं से समुद्र में, सब जगह कष्ट। ऐसे उद्विग्न अवस्था में अगर शांति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले जानना यह है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, भगवान भोक्ता है, वही मालिक है। और वो केवल दुष्ट नहीं है कि भाई सब कुछ अपने लिए देता है, हमारे लिए कुछ देता नहीं है। जब पिताजी बहुत संपत्तिवान होते हैं तो सारे संपत्ति का बोध खुद नहीं करते, अपने बच्चों को, परिवार को, मित्रजनों को, समाज को, सबको बांट देता है वो, और सबके साथ में एंजॉय करता है। वैसे भगवान जो है सब कुछ उनका है, लेकिन जो उनके हम पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो सबके लिए भी है वो। सब प्रॉपर्टी जो हमारे पिताजी के, वो हमारी ही होती है ना अल्टीमेटली, पिताजी हमारे लिए उसको एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पिता पुत्र कहेगा कि नहीं पापा मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊँगा, उससे कितनी कहानी, बाइबल में भी कहानी ऐसे आती है, दे दो हमारा हिस्सा, अभी दे दो, आपके मरने के बाद नहीं, अभी चाहिए। दे दिया पिताजी ने, एक दो बच्चे को दिया, इसको दिया, उसको दिया। एक बच्चा बहुत अच्छा था, पिताजी के साथ रहा, उसका सेवा किया, घर का देखभाल किया, अच्छी तरह से रहा, अच्छी जगह पैसा रखा, गलत इस्तेमाल नहीं किया, पिताजी के साथ में रहा। उसका लड़का ने पैसा लिया, सब दारू शराब औरत सब में उड़ा दिया, कुछ ही दिन के बाद में कंगाल हो गया, रस्ते पर आ गया। फिर भी पिताजी जाते हैं तो प्रेम से घर पे लेके आते हैं उसे। अरे बेटा रास्ते में क्यों तड़प रहे हो, घर पे आओ, मुझसे अलग होके क्यों जा रहे हो, ये बचा हुआ भी तुम्हारा ही है, तुमने गलती किया है फिर भी माफ़ करता हूँ, आ जाओ घर पे। तो घर पे आते ही पिताजी से जुड़ जाते ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उसके जितने भी दुख थे उसके समाप्त हो जाते हैं। पिताजी से मुलाकात होते ही, पिताजी से मिलन होते ही सारे दुख दर्द उसके मिट जाते हैं। तो जुड़ना बहुत जरूरी है भगवान से, भगवान के साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी है। जितना अलग रहेंगे उतना तड़पते रहेंगे। जब तक ये उंगली मेरे शरीर से जुड़ी हुई है तब तक उंगली को मीनिंग है, अर्थ है। हाँ, और उंगली कहेगी मुझे शरीर से नहीं जुड़ना है, इसकी सेवा नहीं करनी है, अलग रहना है मुझे, तो जैसे अलग हो जाएगी वो मृत हो जाएगी, ना अपने आप को पाल सकेगी, ना खुशी प्राप्त कर सकेगी, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जब तक उंगली जुड़ी हुई है तब तक वो बड़ी भी हो जाएगी, शक्ति भी प्राप्त होगी, पोषण भी मिलेगा उसको। करना क्या है, केवल उंगली को सहायता करनी है, बाकी उंगलियों की, हाथ की और पैर की, पेट की सेवा करने के लिए। जैसे उंगली सहायता करेगी अपने आप उंगली को भी पोषण मिलेगा, उंगली बड़ी हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा उसको। तो समझने वाली बात क्या है, विभक्त जीव जो हम सब लोग भगवान से अलग हो गए हैं, हमको भगवान से दोबारा जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के बाद क्या करना है, जो भी हमारे पास है उनकी सेवा में लगाना है। उनकी सेवा में लगने से कोई किसी में कमी नहीं आती है। पेड़ जब फल प्राप्त करता है ना, जब वो पेड़ दूसरों को फल देता है उस जगह नए फल आते हैं, है ना, देखा है ना हम लोग ने। पेड़ कहेगा कि मैं किसी को फल नहीं दूंगा, आज के बाद में खाली फल मेरे पास ही रहेंगे और मैं किसको भी नहीं दूंगा, तो उस जगह पर नए फल नहीं आते। जितने फल तोड़ेंगे आप उधर नए नए फल आते हैं। तो देने से कभी कोई कम नहीं होता है, कोई कंगाल नहीं होता है। एक वहम है, ये गलत बात है कि देने से कम हो जाता है। जो दाता होता है ना उसके पास कभी कमी नहीं होती है, तो वो जानता है कि सब भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए लगाया जा रहा है, तो उसकी वृद्धि होती रहती है। अपने भोग के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो वह नष्ट होते जाता है। इसलिए ऐसे उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव मनाने से क्या होता है, सबसे पहले आपको बताएंगे जगन्नाथ जी का उत्सव किया गया। ये जगन्नाथ जी कौन है, हाँ बड़ी लंबी लंबी कहानी है उसकी, बहुत सुंदर सुंदर कहानी है, संक्षेप में बताते हैं आपको। ये भगवान जब द्वारका में गए थे तो उनको, उनकी पत्नियों को भगवान के बारे में कल सुना था उन्होंने, और उनकी बलराम जी की माता है रोहिणी देवी, वो भी वृंदावन में थी, उन्होंने भगवान का सब बाल लीलाओं का दर्शन किया था। तो सब रानियों ने दर्शन तो नहीं किया था ना, उनका तो विवाह जब हुआ तो भगवान ऑलरेडी उम्र के हो गए थे ना, तो बाल लीलाओं का जो श्रवण और कीर्तन था उन्होंने कभी सुना नहीं था। तो रोहिणी के मुख से उनको बहुत इच्छा थी कि हमको भगवान के गोकुल लीला, वृंदावन लीला को सुनना है, लेकिन एक डर था उनको, कि जैसे ही ये कथा चालू करेंगे तो ये भगवान वहाँ प्रकट हो जाएंगे तुरंत, जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है वहाँ तुरंत प्रकट हो जाते हो। इसलिए जगह जगह भगवान की कथा करते हैं। क्यों करते हैं? कर्मणुक करने के लिए नहीं करते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, भगवान को आह्वान करने के लिए करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान का वर्णन होता है, गुणगान होता है, वहाँ वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। और दो से अधिक लोग जब एकत्र होकर उसको सुनते हैं और बोलते हैं तो उस जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो एक डर था उनको कि अगर वो कथा करेंगे तो वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तुरंत उनको वृंदावन की याद आएगी, तुरंत रथ पर बैठकर वृंदावन चले जाएंगे। अरे फिर कैसे होगा, वापस लौट के नहीं आएंगे। तो पत्नियाँ कहती चले जाएगा, कोई बात नहीं, मत बताओ, उनको संग जरूरी है, हमको उनको हम खो नहीं सकते। लेकिन फिर भी उत्सुकता कम नहीं हुई, बहुत उत्सुकता हुई, बहुत उत्सुकता हुई। तो एक दिन जब कथा हुई तो सुभद्रा देवी को कहा कि आप दरवाजा सब बंद करो और दरवाजे के बाहर खड़े रहो, हम कथा करेंगे अंदर, रोहिणी के मुख से सुनेंगे। जब दूर से वो आने लगेंगे तो आप दरवाजे को ठकठक कर देना, हम कथा बंद करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर बच्चे भी कथा आगे करेंगे जब भी कोई मौका आएगा, तो कम से कम थोड़ी कथा तो होगी ना। लेकिन कथा को जब कथा आरंभ होती है तो इतने मग्न हो जाते हैं, तो सुभद्रा भी व्याकुल है कि क्या चल रहा है अंदर, तो भी कान लगा के कथा सुनती है। जब वो कथा सुनती है तो भी वो भाव विभोर हो जाती है, बहुत आनंद को प्राप्त करती है। ऐसी कथा, ऐसी लीला हमने कभी सुनी नहीं थी। कथा सुनते ही रोहिणी के मुख से बड़े प्रेम से माता बता रही है, अपने बालकों की बाल लीला बता रही है। कोई भी माता होती ना, अभी ऐसी कई माताएं बैठी, उनको पूछो आपके बालक के बारे में, इतना प्रेम से बताएंगे, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, खड़ा रहता है, ये मांगता है, वो मांगता है, फिर वो ऐसे करता है, धोती ऐसे पहनता है, फिर पेन ऐसे पकड़ता है, ये करता है, इतना प्रेम से बताएंगे। जितना समय आपके पास है उतना उनको कम पड़ेगा बताने के लिए, क्योंकि माता का वात्सल्य होता है ना, प्रेम होता है, वो प्रेम से अपने बालक के बारे में बताते रहते हैं। ये तो हम दुनिया की माता, दुनिया के बालक है, वो तो भगवान है स्वयं, और भगवान की माता के मन में भगवान के लिए कितना प्रेम होगा, उतने अनंत प्रेम से वो अपने बालकों के बाल लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। बड़ा हो गया, SSC में फर्स्ट आया, MTech में फर्स्ट आया, तो एक अलग बात है, लेकिन बालक होते हुए गेंद कैसा खेला, पानी में कैसा कूदा था, वो कैसे मुछ लगाया एक पेंसिल से, वो उसको ज़्यादा मज़ा आता है बालक की कथा सुनने के लिए, उसी व्यक्ति की बाल लीलाओं को सुनने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी रोहिणी देवी इतने प्रेम से कथा कर रही है, तो सुभद्रा देवी भी बहुत मशगूल हो जाती है और कथा सुनते सुनते बेहोश हो जाती है। रखा था किसके लिए? ठकठक करने के लिए, जब दूर से आएंगे तो बताने के लिए रखा था, लेकिन वो फेल हो गई, उधर ही वो बेहोश हो गई। और निश्चित रूप से वहाँ कृष्ण बलराम आ गए, देखा अरे बहन को क्या हो गया, ऐसे विचित्र रूप में, बड़ी बड़ी आँखें, हाँ हाथ और पैर अंदर गए हैं, बड़ा शरीर हो गया है, एक थैली की तरह हंस रही हैं और बेहोश हैं, क्या हो गया? गया अरे दरवाजा बंद है, वो भी कान लगा दरवाजे, और स्वयं अपने बाल बन की कहानी सुनते हैं और वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ समझो, आप में से बहुत लोग अभी 25-30-35 साल हो गए, वैसे 50 साल भी हो गए होंगे, कोई गांव का मित्र मिलेगा आपको और गांव के बचपन की याद करेगा तो आप लोग भूल जाएंगे कि आप अभी बहुत बड़े हो गए हैं ना, तुरंत हम लोग छोटे हो जाएंगे उम्र से, एकदम गोटी खेलने की याद आएगी, पतंग की याद आएगी, गुल्ली डंडा की याद आएगी, समुद्र में कूदने की, नदी में कूदने की याद आएगी, पेड़ में चढ़कर फल तोड़ने की याद आएगी, क्या क्या याद आएगा आपको, एकदम मन से बालक हो जाएंगे आप, और एंड में लगेगा चलो यार गांव चलते हैं, अभी झाके आते हैं, चलो सब मिलकर झाके आते हैं, एक बार वो पेड़ पर चढ़ के, अभी बेर का मौसम है, बेर खा के आते, चलो होता है ना ऐसा मूड तुरंत। तो भगवान भी स्वयं खुद लीला किए हुए हैं और खुद जब अपने ही बारे में कथा सुन रहे थे उनको एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, और वो भी सुभद्रा देवी की तरह वैसे ही बेहोश होकर गिर जाते। तो ये आपने जो देखा ना, ऐसे हाथ है उनके, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा चेहरा हो गया है, पैर गायब है, इतना बड़ा शरीर है और गोल से इतना कान तक आंखें पहुंची है, मुस्कान पहुंचती है, हंस रहे हैं बड़े से, आनंद का भाव है वो, उसको कहते हैं महाभाव। वो महाभाव के अंदर रति है, स्नेह है, प्रेम है, आसक्ति है, हाँ मान है, भाव है, प्रेम है, सब कुछ है उसके अंदर, हर प्रकार का जो हमको चाहिए, हाँ हमको पसंद है, ऐसा हर प्रकार का आनंददायी भाव जो है उस महाभाव के अंदर है। और वो महाभाव की पराकाष्ठा है भगवान, भगवान के इतना महाभाव कोई अनुभव नहीं कर सकता है। तो ऐसे भगवान भी अपने चरम आनंद को प्राप्त करते हैं और बेहोश होकर उस अवस्था में गिर जाते हैं जिस अवस्था में ये मूर्तियाँ आपके सामने थी। तो यह इसके पीछे कहानी है कि ऐसे अलग प्रकार के भगवान कैसे हैं, ना उंगलियां हैं उनकी, ना पैर है, ना बड़े बड़े गोल गोल शरीर है, सुभद्रा के जो हाथ भी नहीं है, ऐसे कैसे भगवान हैं? क्योंकि जब ये उनकी अवस्था हुई तो नारद मुनि आकाश से आ रहे थे, देखते अरे हमारे प्रिय भगवान की ऐसी कैसी अवस्था हो गई। लेकिन जब वो ऐसे कैसी अवस्था हो गई ये सोचते हुए नीचे आते हैं तो उनको देखते ही उनको बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव होता है जो उनको पहले कभी हुआ नहीं था। तो भगवान के भक्त हैं वो, हमेशा भगवान की भक्ति का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन ऐसा आनंद लेने का अनुभव होने पर भी वैसा आनंद उनको पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था जो वो देखकर प्राप्त कर रहे, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं। अरे केवल दर्शन मात्र से, इस अद्भुत रूप का दर्शन करने से मुझे इतना आनंद हो रहा है। उस आनंद की अवस्था में भी हमारे जैसे भौतिक दुनिया में जो बद्ध जीव है उनके बारे में सोचते हैं कि ऐसा आनंद अगर किसी को मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, दोबारा जन्म लेने को नहीं आएगा, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, कष्ट नहीं प्राप्त करेगा, बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं गिरेगा, शरीर को ही मुक्त हो जाएगा, तो भगवान के धाम में ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए चिरंतन मुक्त हो जाएगा वो। तो ऐसी अवस्था में भी जो खुद आनंद का अनुभव कर रहे हैं, होश में रहकर भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान फिर दोबारा अपने पूर्व शरीर में आ जाते हैं, उस महाभाव की अवस्था को छोड़कर पहले जैसे हो जाते हैं। तब सबसे पहले नारद मुनि उनसे वरदान मांगते हैं कि हमको आप ये वरदान दीजिए, आपके इस रूप को केवल देखकर हमको इतना आनंद आया है, इतना प्रेम आपके लिए महसूस किया हमने, अनुभूति की उसकी, हम आपसे चाहते हैं कि आप इसी रूप में इस दुनिया में आइए, भौतिक दुनिया में, ताकि जिनको प्रेम है और जिनको प्रेम नहीं है, जो भी आपको देखेगा उसको देखकर उनके मन में प्रेम जागृत हो जाएगा, और प्रेम जागृत होते ही वो आपके पास आएंगे और आपके पास ही रहेंगे, ना दोबारा कष्ट भोगने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो भगवान ने तो वो रूप का दर्शन दिया, लेकिन वो रूप का दर्शन हम और आप तक पहुंचाने का काम किसने किया है? नारद मुनि ने किया है, क्योंकि संत है ना वो। संत का क्या भाव स्वभाव है? करुणा, दूसरों के दुखों के प्रति करुणा, ये संत का स्वभाव है। कभी भी दूसरों के बारे में कैसे उद्धार किया जाए, कल्याण किया जाए, हेल्प की जाए, इसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे अद्भुत अवस्था में हैं। क्या महात्म्य है उनका? जगन्नाथपुरी में केवल जाना है और उनको देखना है, बस उनको देखना ही एक उत्सव है, नेत्रोत्सव कहते हैं उसको, केवल उनको दर्शन करना बस, बाकी उनके लिए भोग बनाना, अर्पण करना, आरती करना, श्रृंगार करना तो है ही, लेकिन सब करने के बाद करना क्या है? केवल देखना है बस, कोई मेहनत नहीं करनी है, आँख खाली खोली रखनी है बस। तो ये जगन्नाथ जी का महात्म्य है। और ऐसे उत्सव क्यों करते हैं? तो गृहस्थों के जीवन में और उद्धार होने का मार्ग क्या है भगवान की सेवा के बिना, बताओ? गृहस्थ आश्रम किसको कहते हैं? जिस आश्रम की जगह का महत्व यह है कि आश्रम मतलब जिस जगह पर भगवान राजा है, सेंटर में भगवान है, ड्रावर में नहीं है। सुबह उठा, ड्रावर खोला, दो अगरबत्ती घुमाया, ड्रावर बंद, फिर गया मार्केट में बिजनेस करने के लिए, वो आश्रम नहीं है। आश्रम मतलब जहां पर भगवान के आनंद के लिए श्रम किया जाता है, वो आश्रम। और गृहस्थ आश्रम मतलब जहां शादीशुदा लोग रहते हैं, कौटुंबिक लोग रहते हैं, वो गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम को सफल करना है, संपन्न करना है, समृद्ध करना है, तो उसमें भगवान की सेवा होनी ही चाहिए। जब कोई गृहस्थ आदमी काम पे जाता है तो दंडवत करता है, कहते हैं स्वामी, मालिक, स्वामी आपके लिए अभी हम काम पे जा रहे हैं, धन कमा कर लाएंगे, वो धन से आपके लिए भोग लाएंगे, आपके लिए वस्तु लाएंगे, आपको अर्पण करेंगे, हमारा तन, हमारा मन, हमारा शक्ति, हमारा रुपया, हमारा धन, जो भी कुछ है वो सब आपके लिए है, सब आप ही ने दिया हुआ है, बुद्धि भी आपने दी है, शक्ति भी आपने दिया है, शरीर भी आपने दिया है, घर भी आपने दिया है, सबके मालिक आप, ये सब कुछ जो भी हमारा हम सोचते हैं वो सब आपका है भगवान। दंडवत करते हैं, जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, दोबारा दंडवत करते हैं, आपके घर में लौट के आए, हाँ नाम हमारा लिखा है, गवर्नमेंट में भी दर्ज किया हुआ है किसके नाम पे घर है, उधर नोटिस किया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि घर के मालिक आप, ये भाव गृहस्थ का होता है तो उसका उद्धार हो जाता है। और केवल घर में खाली दंडो प्रणाम नहीं करते हैं, उनके लिए उत्सव भी करते हैं, तो भोग भी लगाते हैं, तो खाना भी बनाते हैं उनके लिए, तो फूलों की माला बनाते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार बनाते हैं, हाँ कभी और रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मनाते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, उनको अलग अलग सुंदर सुंदर सुगंधित रंग बिरंगी फूलों से उनका अभिषेक करते हैं, फिर पंचामृत का अभिषेक करते हैं, वो 56 भोग लगाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है वो। भगवान को यहाँ पर आकर कलयुग के बॉम्बे के घटिया खाने का बनाया हुआ भोग जो है कोई ज़रूरत नहीं उनको। क्या चीज़ मिलती है यहाँ पर? सब में मिश्रण है आजकल, सब क्या बोलते हैं उसको, भेसल, कुछ भी लो सब कंटामिनेटेड, सब्जी लो, फल लो, फूल लो, तेल लो, कुछ भी व्यंजन ले लो, सब घटिया माल मिलता है आजकल। कितना पैसा खर्च करने में भी अच्छा माल नहीं मिलता है। हाँ, कलयुग की ऐसी अवस्था है, पानी स्वच्छ नहीं है, हवा स्वच्छ नहीं है, तो उनको हमारे जैसे घर में आकर वो सब घटिया माल का बना हुआ भोजन कोई ज़रूरत नहीं करने की, हमको ज़रूरत है उनको बना के खिलाने की, इसलिए हम लोग उनको घर पर रखते हैं। कोई बात नहीं भगवान माफ़ करना, लेकिन हमारे घर में जो भी है हमारा है, वो आपका ही है, हमारे प्रेम के साथ में उसको आप स्वीकार करो, बस यही हमारी तमन्ना है। इस हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए उनको हम घर में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में रहते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है सब क्या करना है। ये मत समझना कि भगवान को बहुत भूख है, बहुत प्यास है हमारे 56 भोग की, हाँ उनको केवल एक ही वस्तु की प्यास है, उनको केवल हमारी प्रेम की प्यास है, बस केवल प्रेम के लिए यहां पर सब कुछ सहते हुए रहते हो। उनके धाम में हर पेड़ कल्पर वृक्ष है, हाँ हर व्यक्ति चलता नहीं है केवल नृत्य करते रहते हैं, हर कोई बोलता नहीं है केवल गीत गाते रहता है, हर वस्तु हर कर्ण चिंतामणि है वहां पर, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है किसी का, कोई द्वेष नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर आनंद ही आनंद है, सब प्रेमी भक्त है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई खिंचातानी नहीं है, कोई पाँव नहीं खिंच रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, ऐसा दिव्य धाम है उनका गौलोक धाम, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं उनको। फिर भी आप और हम थोड़ा थोड़ा प्रेम से कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, वो प्रेम को स्वीकार करने के लिए यहाँ तक आते हैं, हर घर में रहने को तैयार है। तो हमारा फर्ज है ये कि तन मन से और आत्मा से हृदय से जो भी हमारा है वो उनको प्रेम से अर्पण करना चाहिए। ये समझ के नहीं कि मैंने 500 रुपये घी का लड्डू बनाया, अभी इतना महंगा माल बनाया है, ये सोच के नहीं बोलते कि हमारे पास जो भी है वो लगाया है उस पर, लेकिन प्रेम जो है वो हमारा है, घी भी उनका है और पैसा भी उनका है, लेकिन जो प्रेम है वो हमारा है, वो प्रेम को लेने के लिए वो व्याकुल है बस। तो उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। भाई हमारे भर के घर में बालक का जन्मदिन है, क्या जरूरत है बर्थडे मनाने की? हाँ किसी को बुलाओ मत, एक छोटा सा केक लेके आओ, काटो घर पे खिलाओ उसको, नहीं 10 लोगों को बुलाएंगे, उनके लिए गिफ्ट लाएंगे, आने वाले भी गिफ्ट लेके आएंगे, उनको आने वालों को गिफ्ट लेके हम लोग रिटर्न गिफ्ट देंगे, हाँ घर में पताका लगाएंगे, हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। क्यों करते हैं? प्रेम को व्यक्त करने के लिए कि हे बेटा आई लव यू, हम आप पर प्रेम करते हैं, इसलिए ये उत्सव मना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बेटा होता है 1 साल का, वो तो समझता भी नहीं क्या चल रहा है, लेकिन सब लोग उत्सव मनाते हैं उसके बर्थडे का। तो क्यों मनाते हैं? आपकी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए? नहीं नहीं, वो बालक के लिए मनाते हैं, लेकिन बालक को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आप हैं बालक, आप हो इसलिए हमें खुशी है, इसलिए हम उत्सव मनाते हैं। बेटी की शादी हो रही है, कितना खर्चा करते हैं, हाँ नए घर में आते हैं तो गृह प्रवेश के लिए कितना खर्चा करते हैं, ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं? प्रेम को व्यक्त करने के लिए। और जिन पर हम प्रेम करते हैं उनको सबको बुलाते हैं, दीपावली में, भैया दूज में, और इसमें और शादी की सालगिरह में और जन्मदिन के उत्सव में, जिन जिन पर हम प्रेम करते हैं उनको प्रेम जताने के लिए उनको बुलाते हैं, हम लोग खाना खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, मौके ढूंढते हैं कब प्रेम व्यक्त किया जाए। वही प्रेम जब हम भगवान पर करते हैं तो उसका परिणाम जन्म मृत्यु से मुक्ति में हो जाता है, जन्म मृत्यु के दुख से हम मुक्त हो जाते हैं। और वही प्रेम जब दुनिया में हम करते हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसका अंत होता है, वो प्रेम टूट जाता है बीच में कभी, और प्रेम बचता भी है तो मृत्यु उसको आकर तोड़ देती है, उसमें बाधा डाल दी, वो कट कर देती, फिर हम रोते रहते उसकी याद में, इस पर प्रेम करते थे वो चला गया। लेकिन भगवान पर प्रेम करेंगे तो कभी रुखवा नहीं हो जाएंगे हम, कभी दुखी नहीं हो जाएंगे। जो भगवान पर प्रेम करता है वो दुनिया पर भी प्रेम करता है, लेकिन भगवान पर प्रेम करने के कारण वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, दोबारा यहाँ पर कष्ट भोगने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा रहस्य की बात है ये, केवल मनुष्य जीवन में इस रहस्य को हम समझ सकते हैं, और किसी भी जंतु के जीवन में ये हम समझ नहीं सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में भगवान की उपस्थिति है तब तक हम शांति से और प्रेम से रह सकते हैं, जब इसका अभाव होता है तो हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है, कितना भी हंसेंगे तो भी ऐसा ही रहता है, दुख से भरा हुआ। आप जाओ ना मेरा रोड स्टेशन पे जाओ, दादर में स्टेशन पे जाओ, चर्च गेट पे जाओ, एक भी व्यक्ति हंसता हुआ नजर नहीं आएगा, सबका चेहरा लटका हुआ है टेंशन से, सब परेशान है कब घर पहुंचेंगे, कितना भीड़ रहेगा, गर्मी सर्दी बारिश में इतना कष्ट है, इतना काम पे जाना है, वहाँ पर भी जो पसंद नहीं है उनके साथ में काम करना है, क्या करेगा, लोन है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे का फी भरना है, इधर है उधर है, सब लोग परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त कैसे रहते हैं, आनंद रहते हैं, दुख होने पर भी आनंद में रहते हैं, तो भगवान चीज ही ऐसी है। हाँ अभी हमारा तो चेहरा बहुत काला है, थके हुए हैं, लेकिन चार लाइट लगा दो ऐसे चमकाएगा ना चेहरा एकदम, हाँ लगेगा क्या ब्राइट चेहरा है, नहीं रहस्य उस लाइट का है, थोड़ा अंधेरा कर दो बंद कर दो एकदम ऊर्जा हुआ चेहरा देखेगा। तो पावर लाइट की है, वैसे जो आनंद का जो सागर है, जो अनुभव है, वो भगवान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। हाँ अभी ये बल्ब है ना 2000 वाट का है समझो, उसका बटन बंद कर दो लाइट आएगी उसके अंदर, नहीं आएगी। बल्ब का जो माध्यम है ना वो बटन में छुपा हुआ है, बटन ऑन है, और बटन ऑन मतलब वो ऑन मगर बिजली के सोर्स से जुड़ा हुआ है, तब ऑन करेंगे तो 2000 का जो है पूरा लाइट देगा अपने को। तो रहस्य 2000 वाट के अंदर नहीं है, रहस्य कनेक्शन के अंदर है, कनेक्टेड है तो पावर है तो लाइट है उसके अंदर। वैसे हमारे अंदर हमारे आत्मा में भी आनंद का स्रोत है, लेकिन वो अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रकाश आता है, आनंद का प्रकाश, खुशी का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, चिरंतन होने का प्रकाश जो है वो भगवान के साथ जुड़ने पर आता है। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं ना वो गरीब होने पर भी बहुत खुश रहते हैं। अरे सुदामा को देखो, शुक्लवर ब्रह्मचारी को देखो, कितना उदाहरण शास्त्र में है, एक कौड़ी भी नहीं थी उनके पास लेकिन कितना आनंद में रहते थे वो। पांडव देखो, जंगल में थे एकदम कंगाल होकर तभी भी आनंद में थे, राजा बन गए तभी आनंद में थे, क्योंकि दोनों स्थिति में उनका भगवान के साथ का कांटेक्ट जो है ना कभी कट नहीं हुआ था, हमेशा जुड़े हुए थे भगवान के साथ में। ये हमको समझना चाहिए जीवन में, क्यों हम परेशान हैं इतने, क्योंकि भगवान से जुदा हो चुके। और कोई अगर खुश दिखता है तो क्यों दिखता है, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए कोई खुश दिखता है ना, कुछ समय के लिए हम लोग खुश होते हैं, एग्जाम पास हो गए, प्रमोशन हो गया, पगार बढ़ गया, हाँ दिवाली आ गई तो खुशी होती है हमारे पास, कुछ बाद में फिर खत्म हो जाती है। वैसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली हर समय खुश दिखाई पड़ता है वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो खुश होता है। पैसा होने पर, धन दौलत होने पर, सौंदर्य होने पर, शक्ति होने पर आदमी खुश नहीं होता है, कभी परेशान रहता है हमेशा। इसलिए हम आपको विनती करते हैं भगवान से जुड़ के रहो, ये जीवन उसी के लिए। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी मत करो, बच्चों को मत देखो, सबको संभालो, पत्नी को संभालो, बच्चे को संभालो, घर संभालो, नौकरी करो, सबको हेल्प करो, सब कुछ अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहकर करो। हमारे ऑफिस में एक हमने एक पेपर ऐसा एक स्टैंड रखा है, उस स्टैंड में लिखा है कि जिसके पास खुशी है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। ओनली इफ यू आर हैप्पी यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। कितनी बड़ी बात है, देखो आप सोचो, अगर खुश रहना है तो पहले सबसे पहले खुशी का स्रोत जो है उसको कनेक्ट करो। हमारे पास बहुत 40,000 का मोबाइल सेट है लेकिन कनेक्ट नहीं किया अभी तक सर्विस से उसको, तो क्या फायदा है उसका, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तब सारी वैल्यू उसकी आ जाएगी, उसका सब नंबर आएगा, फोन आएगा, सब उसका मैसेज आएगा, सब कुछ आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट 50,000 का है कि 5,000 का है कोई वैल्यू नहीं उसके अंदर, कनेक्शन के अंदर वैल्यू है। आपने मोबाइल हैंड बदली कर दिया, दूसरा ले लिया 60,000 का, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कनेक्शन के सब अंदर सब रहस्य छुपा हुआ है। वैसे ही जीवन में अगर अर्थ को प्राप्त करना है तो भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। और अभी मौका है, कल का मौका नहीं है। हाँ, कल कुछ नहीं है, अभी जुड़ेंगे तो कुछ है। कल जोड़ दूंगा पता नहीं है कल क्या होगा, नो वन नोज। आज का समय है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन में कुछ बुरे विचार नहीं आ रहे, कुछ दुर्घटना नहीं हो रही है, सब कुछ अपरेंटली मतलब दूर दूर से क्यों ना हो ओके लग रहा है, तब तक भगवान के साथ जुड़ दो अपने आप को, तब जाकर आपके जीवन में खुशी आएगी। नहीं तो इस दुनिया में कहीं भी ढूंढो आप, किसी भी कोने में, किसी भी दिशा में जाओ, कोई भी टर्न लो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ढूंढते रहो, खुशी नहीं मिलेगी यहाँ पर आप, केवल भगवान के साथ जुड़ने से ही मिलेगी। तो मेरे लिए भी सत्य है, आपके लिए भी है, बालक के लिए भी है, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए है। जो मरने की स्थिति में आ गया है उसके लिए भी ये सत्य है। अवस्था कोई भी हो, पॉइंट वही है, भगवान के साथ जुड़े रहो। अभी हमारे एक मित्र की पत्नी है, 15 दिन से कोमा में है वो, बोले कैसे उसको खुश कर सकते हैं आप, उसको भगवान के साथ जोड़ दो, कैसे करेंगे भगवान के साथ, कोमा में है वो, नहीं आप उसके लिए कनेक्शन बनो, तो कान में जाके भगवान का नाम बोलो। तो उन्होंने एक हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा म्यूजिक का एक लगा दिया उसके कान के पास, 24 आवर्स चल रहा है वो, क्योंकि आत्मा कोमा में नहीं है, शरीर कोमा में है, आत्मा हमेशा जागरूक रहती है, शरीर के द्वारा वो कभी कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाती है। शरीर कोमा में गया तो वो व्यक्त नहीं कर सकती, भावना को व्यक्त नहीं कर सकती है। शरीर अगर होश में है तो वो भावना व्यक्त कर सकती है, कुछ बोल सकती है, कुछ कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन आत्मा हमेशा जागरूक रहती है। वो प्रतिसाद देने में अगर असमर्थ होगी, फिर भी अगर आप जोड़ेंगे उसको भगवान के नाम से, वो जुड़ जाती है तुरंत, और अपनी भावना को भगवान के लिए व्यक्त कर सकती है। इसे हमारा 100% विश्वास है इस बात पर। इसलिए जो मरने के सामने है व्यक्ति, कोमा में है, उसको भी भगवान के साथ जोड़ दो, तो क्या होगा, उसकी गति बदल जाएगी। अगर नरक में जाता होगा तो भगवान की ओर जाएगा वो, इतना पावर है उसके अंदर। एक कनेक्शन कोई रिलायंस का और वोडाफोन का नहीं है, भगवान का कनेक्शन है ये, सीधे भगवान को जोड़कर भगवान के पास लेके जाता है अपने को, इतनी पावर है उसके अंदर। इसलिए इस जन्म में भगवान से जुड़ने के लिए कंजूसी मत करो। क्यों हम बोलते हैं आपको, पुकारो पुकारो, बोलो उनका नाम लो, आधे लोग बोल रहे हैं आधे नहीं बोल रहे हैं, संकोच क्यों कर रहे हो, संकोच मत करो, क्योंकि यही मौका है। आगे बोलती बंद हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लकवा मारेगा, तो क्या भगवान का नाम लेगा वो, आज शक्ति है तो ले लो, पता नहीं कब लकवा होगा, कभी बोलती बंद हो जाएगी, कभी कुछ शरीर में व्यंजन आएगा, कुछ कष्ट आएगा, व्यवधान आएगा, रोग होगा, सब क्षमता खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ, एक मोहम्मद अली था, वो इतना फास्ट बॉक्सिंग करता था कि कभी हाथ आगे जा रहा है उसका दिखाई पड़ता है, इतनी स्पीड थी उसके अंदर। आज वो एक ग्लास उठाने में भी असमर्थ है, वो उसको ऐसा रोग हो गया मेंदू का कि वो अपने हाथ से ग्लास नहीं उठा सकता है, दूसरे को उठा के पिलाना पड़ता है उसको। कभी कितना शक्तिशाली था, कितनी कला थी उसके अंदर, आज उसके अंदर 1% भी कला नहीं है, ना मर रहा है ना जी रहा है, ऐसी व्यवस्था है। तो किस पर गर्व करें हम, क्या और क्यों करें गर्व, सब कुछ नश्वर है। हाँ, आज है नहीं है, आज काले बाल है कल गोरे बाल, कोई बाल है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। किस पर गर्व करेंगे हम, स्वास्थ्य पे करेंगे तो बीमारी आ जाएगी, जवानी पे करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, हाँ बल पर गर्व करेंगे तो निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। जवान आदमी भी लकवा मारेगा तो जवान होते हुए भी वो कमजोर हो जाएगा। अब बूढ़ा आदमी कर ही क्या सकता है बीमार होने पर। इसलिए जवान हो, बालक हो, मध्यम अवस्था में हो, बूढ़ी अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में हो, सभी अवस्था में उनसे जुड़े रहो। बस जब उनसे जुड़े रहोगे तो वो हमको रास्ता दिखाएंगे क्या करना है, जो हमारे हित में है। क्या बताया पहले आपको मैंने, सूरदम सर्वभूतानाम, सभी जीव के वो हित चिंतक हैं, लेकिन खास करके जो उनकी शरण में जा चुके हैं उनके वो सबसे ज्यादा हित चिंतक हैं। जो उनकी शरण चाहते नहीं है वो क्यों देंगे उनको, मैं आप पर प्रेम करने को तैयार हूं लेकिन आपको मेरे प्रेम में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों दूंगा आपको प्रेम। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट तैयार हो गया तो मैं प्रेम तरह दूंगा। वैसे भगवान है हमारे, वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कब ये मुझे छोड़कर दुख भोगने वाले जीव मेरी ओर मुड़ेंगे, मेरा सहारा लेंगे और कब मैं उसका उद्धार करूंगा। इसके लिए भगवान व्याकुल रहते हैं हमेशा। हम लोग उनको पुकारने में चूकते हैं, उनके साथ जुड़ने में चूकते हैं, उनकी सेवा करने में चूक जाते हैं, इसलिए हमेशा कंगाल रहते हैं। देखो श्रृंगार करके आ रहे हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की जय। हरे कृष्णा। इनके साथ जुड़ जाएंगे दुनिया के सब कष्ट मिट जाएंगे, सब दुख दर्द मिट जाएंगे परमानेंटली। हाँ, टेम्पररी नहीं, दिवाली और क्रिसमस की बात नहीं कर रहे, कुछ समय के आनंद की बात नहीं कर रहे, परमानेंट आनंद की बात कर रहे। इसलिए हम आपको विनती करते हैं, अभी एक छोटी सी कहानी बताएंगे इनके, इनकी कृपा की कहानी। हाँ, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। एक बहुत गरीब भक्त था उनका, छोटी सी कहानी है, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उसमें। ग्राम था बंधु मोहंती, वैसे इनकी कृपा की अनंत कहानियाँ हैं। एक कहानी बताएंगे बंधु मोहंती की। बंधु मोहंती जो थे एक गरीब व्यापारी थे, कुछ ना कुछ बेचते थे। उनके घर में जगन्नाथ जी थे, मंदिर था उनका। जैसे हमने आपको पहले बताया ना, जब काम पे निकलते थे दंडवत करते थे, जब काम से आते थे तो सारा हिसाब किताब जो है वो भगवान को प्रस्तुत करते थे। डे रिपोर्ट, रिपोर्ट, इतना का माल लिया, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट लिया, इसमें आपको ये व्यंजन करके लाए, ये बच्चों को लाया, ऐसा रोज उनको रिपोर्ट देते थे। धीरे 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 उनका जो बिजनेस था, जरा बच्चों को संभाल लीजिए प्लीज प्लीज भद्रप्रिया, टेक द चिल्ड्रन अवे। तो धीरे 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 उनका बिजनेस फ्लॉप होते गया, फिर भी रोज वो भगवान को रिपोर्ट देते थे कि आज इतने का माल लिया, इतना नुकसान हो गया। पहले बोलते थे प्रॉफिट हुआ, बाद में बोले लेकिन नुकसान हो गया, इतना ही बचा, अगले दिन उतना लगाया तो वो भी नुकसान हो गया। ऐसे करते करते एक दिन सब खत्म हो गया उसे। तीन बच्चे थे उनको, पत्नी थी, कुछ भी खाने को नहीं बचा। जब बिजनेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो पत्नी ने कहा भी क्या करेंगे, चलो उनके ही पास जाएंगे जहाँ पर उनका धाम है। तो सब कुछ पैकिंग किया और चलने लगे। भूखे थे, हम तभी भूखे थे, बच्चे रो रहे हैं, भूख भूख भोजन मांग रहे हैं और कुछ है ही नहीं, क्या करें। चलते 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 भूखे बालकों को गोद में लेकर ये पति पत्नी जो है वो जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। बहुत दिन तक यात्रा करते हैं। जगन्नाथपुरी जब पहुँचते हैं तो भगवान की श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं हो उसकी, ये सोचने रहे कि क्या फायदा है भगवान की भक्ति करके, इतना भक्ति किया फिर भी बच्चे भूखे, हम भूखे, पत्नी भूखी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं, हमारे वो कालिया बोलते हैं जगन्नाथ जी को, वहाँ पर हमारे कालिया जी जो हैं बहुत दयालु हैं, कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। वहाँ पहुँचते बहुत रात हो जाती है, तो रात में जो है बच्चे पूछ रहे हैं कालिया का घर आ गया क्या, तो पिताजी बोलते हैं हाँ आ गया है, तो भोजन नहीं आया क्या अब तक, हम तो कालिया के पास भूखे आए थे। बोले बेटा आ जाएगा भोजन, चिंता मत करो। लेकिन वो भूख के मारे थक के सो जाते हैं। उतने में एक लड़का आता है, अंधेरे में आता है, अरे बंधु मोहंती कोई है क्या, बंधु मोहंती कोई, बंधु मोहंती है क्या, बंधु मोहंती, ऐसे करते 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 पूरा पुकारते पुकारते दूर से आता है। फिर ये बलक सा सो रहे हैं, इचक जाता है बंधु मोहंती, हाँ मैं बंधु मोहंती हूँ। बोले अरे जगन्नाथ जी के मंदिर से, कालिया जी के मंदिर से ना ये थाली आपके लिए आया है, वो उन्हें कहा है कि बंधु मोहंती को देना, वो जगन्नाथपुरी में आ चुका है उसको दे देना। इतनी बड़ी सोने की थाली, उसके अंदर 56 व्यंजन थे, पूरा फ्रेश महाभोग, राजा राजभोग भगवान का। तो उठा दे, अरे उठो उठो उठो, बालकों को उठा दे, पत्नी को उठा दे, उठो उठो देखो भोजन आया है। सब लोग नींद से उठ जाते हैं, एकदम बहुत कमजोर अवस्था में उठ जाते हैं और चार फटाफ खाने लगते हैं। इतने भूखे कितने दिन के हैं ना, तो तीन बच्चे, माता पिता सब अच्छी तरह भोजन करते हैं। और फिर अभी बच्चा कहता है वो कि ये खाना हो गया ना, फिर लेने को आ जाऊँगा थाली में, आप खा लेना उसको आराम से, और बच्चा निकल जाता है। और ये लोग सोचते नहीं कि कहाँ से आया है, कहाँ कुछ सोचते, इतनी भूख लगी रहती तो वो फटाफट खाने लगते हैं, पूरा खाते हैं, पेट भर कर संतुष्ट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं बच्चा कौन था वो कहाँ से आया था, लेकिन कहीं दिखता नहीं अंधेरे में, कौन ढूंढेगा उसको भी। थोड़े आगे जाके ढूंढता है, वो बुलाता है कि नाम भी पता नहीं, क्या बुलाएं क्या उसको, अरे कोई है कोई है, कोई भी नहीं है और अंधेरा है। उनको पता लगना रहे कि थाली सोने की है चांदी की है कि पत्थर की है, क्या मालूम पड़ता है। उसको उल्टा उल्टा रखे तकिया बना के सो जाते हैं, सुबह हो जाती है। तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर सोने का थाल गायब, पूरा मंदिर में मंगला होते तभी मालूम पड़ता है कि सोने की थाल जो थी वो गायब हो गई है, कोई चोरी कर लेके गया है। तुरंत वो गजराज जो है गजपति राजा, उसको खबर पहुंचती है, जो मंदिर के आज भी अधिष्ठाता है गजपति राजा जो है वहाँ के उड़ीसा के राजा, तो खबर उनको भी जाती है कि आपके मंदिर के अंदर से थोड़ी गायब हो गई है। तो राजा के सैनिक आते हैं, सबको ढूंढते हैं, सब पुजारियों को सबको झड़ती लेते हैं, सबकी कहीं भी थाली नहीं था, सब पूछते हैं किसने रखा था, क्या किया था, लास्ट किसने हाथ लगाया था, ये किसने किया था, वो किसने किया था, कहीं भी नहीं मिलता है। बोला जाओ, अभी तक सुबह ही हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं हो गई, रात को ही गायब हो गया है, कोई चोर शहर में रहेगा, जगन्नाथपुरी के अंदर रहेगा, जाओ ढूंढो उसको जाके। चारों दिशा में सब जाके ढूंढ रहे हैं, तब तक दिन होता है, उजाला आ जाता है। हाँ, वो सैनिक आते हैं और पकड़ लेते हैं उनको, अरे ये तो थाली है, तकिया बनाकर सो रहे हैं, हाँ रात को चोरी करके अभी भागने की तैयारी में थे, अभी पकड़े गए, थाली लेते हैं, बोलते यही थाली है, पुजारी भी साथ में लेके जा रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि यही है थाली, रात को मंदिर में थी, भोग लगाया था, भोग भी गायब थाली भी गायब। तो उसको अरेस्ट कर देते हैं। तो बच्चे बोलते हैं पिताजी ये क्या हो रहा है, खाना दिया और अभी अरेस्ट किया जा रहा है। डोंट वरी, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, कुछ व्यवस्था हमारे लिए होगी इसके अंदर। तो सब पिताजी को माताजी को तीन बालकों सबको अरेस्ट कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। अभी जेल में कैसा होता है, तीन बार खाना मिलता है ना, तीन बार खाना चालू हो जाता है। फिर उनको प्रश्न पूछते रहते हैं, कहाँ से लाया, कहाँ से आया वो, कैसे ये भक्त हुआ, सब प्रश्न पूछते हैं, झड़ती लेते हैं। तो राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, वो बोलते हैं मेरे सबसे अच्छे भक्त को तुमने अरेस्ट किया है, तुरंत रिहा कर दो, मेरी आज्ञा है, उसके लिए घर बांध दो और जीवन भर खाने की व्यवस्था करो उसके लिए। तो राजा जो है नींद से उठ के भाग भाग के जेल में आता है, अरे इनको खोड़ो, ये तो भगवान के भक्त हैं, इनको अरेस्ट मत करो, जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है। सब लोग कांपते हैं, तुरंत उसको रिहा करते हैं, बढ़िया से बढ़िया घर बना देते हैं और जगन्नाथ जी उसको राजा को और आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि दोपहर के समय जो राजभोग लगेगा ना, वो पूरी थाली इनके घर में जानी चाहिए रोज, ये हमारा आदेश है आपका। सोने की थाली में जाना चाहिए। तो सारा आदेश एक तो यहाँ से लिया करते हैं, तुरंत बड़े बंगले की कोठी की व्यवस्था करते हैं, तुरंत मंदिर में भागते, रात को पुजारी को जगाते हैं, बोलते हैं चीफ पुजारी आपको हमारा आदेश है, पहला जो राजभोग लगे दोपहर को लगेगा 56 भोग, वो सबसे पहले इस महल में जाना चाहिए बंधु मोहंती के घर पर। तो भगवान ने केवल एक बार नहीं खिलाया, हाँ अरेस्ट भी किया ना, तो भी उसके अंदर कुछ रहस्य था उनका, सब फर्स्ट क्लास व्यवस्था किया उनका। और जीवन भर बंधु मोहंती क्या किया उसने, जब थाली आती थी ना तो सबसे पहले वो बाहर जाकर सबको बांटते थे, कोई है महाप्रसाद लेने के लिए कोई है, सबको खिला के फिर घर में आके अपने बच्चों को भरपेट खिला देते। ऐसा नहीं कि अच्छा है भाई इतना सब मिल रहा है अपने अकेला खाओ आराम करो, भगवान का भक्त जो होता है ना ऐसा होता है, उसको परमानेंट भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान कष्ट देंगे लेकिन वो अच्छे के लिए होता है हमारे, देर होगी लेकिन अंधेरा नहीं उधर, थोड़ा बहुत कष्ट देंगे आपके अच्छे के लिए देंगे। हाँ थोड़ा बहुत उनको धक्का मुक्की करके अरेस्ट किया गया लेकिन तुरंत ही परमानेंट व्यवस्था किया उनका, उन्होंने बहुत दूर से चलाया उनको भूखे पेट पर। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं भगवान, अपने भक्त की श्रद्धा का गौरव सब जनता को पता होना चाहिए, इसलिए भगवान उसका गौरव का विकास करते हैं। आप बोलेंगे अरे इतने अच्छे भक्त थे उनके पांडव, क्यों उनको वनवास भेजा उन्होंने, क्या कमी थी क्या भक्ति के अंदर उनकी, नहीं उन्होंने दिखाया कि अच्छा समय था तो मेरे भक्त नहीं थे वो, अच्छा समय और बुरा समय दोनों समय मेरे भक्त थे वो, अच्छा समय हुआ सब भक्ति करेंगे, क्या बड़ी बात है, कसौटी कब होगी उसकी, हाँ तब कसौटी होगी जब संकट आएगा, जब कष्ट आएगा, जब पीड़ा होगी, तब क्या करता है वो, भगवान दिखाते देखो तो कष्ट दो पीड़ा दो कुछ भी दो, मेरा पैर वो छोड़ता नहीं कभी भी, मेरी सेवा को भी त्यागता नहीं है वो, हमेशा दुख में और सुख में मेरे साथ जुड़ा रहता है वो, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम करो रे, घाय गौरा मधुर स्वरे, हाँ क्या लक्षण है भगवान का, केवल सुख में नहीं करता है वो भगवान का नाम। भगवान की भक्ति और शरण और सेवा जो है सुख में और दुख में भी खास करके वो लगा रहता है उनकी सेवा में पूरी श्रद्धा के साथ, वेट करेगा वो। ऐसा नहीं कह रहे क्या दो महीने हो गए तीन महीने हो गए अभी तक बिजनेस ऊपर नहीं आ रहे, क्या फायदा है भगवान की भक्ति करके, ऐसा बिजनेस करता नहीं भगवान के साथ, ये तो व्यापारी हो गया ना। अरे भगवान लो छह केला लो हमको 1,25,000 का दान दे दो। सिद्धि विनायक में या शंकर के मंदिर में सब लोग खड़े रहते थाली लेकर, 4 केले 1 नारियल आधा थोड़ा कुंकू थोड़ा हल्दी, लो भगवान एक घर का हमारा व्यवस्था कर दो 17,00,000 का, बहुत दिन से घर नहीं है हमारे पास। ये सब क्या है व्यापार है सब, ये अर्थार्थी है सब, पैसे के पीछे भाग रहे सब, कोई गणपति से और शंकर से उनको प्रेम नहीं है, केवल नोट से प्रेम है उनको बस। ये भक्ति नहीं ऐसी होती है, भक्ति तो पांडवों ने की थी, कुंती माता जी ने की थी, द्रौपदी ने की थी, ध्रुव महाराज ने की थी, प्रहलाद जी ने भक्ति की थी, इतना कष्ट होने पर भी भगवान का चरण नहीं छोड़ा उन्होंने। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को अपने आप को बेच देते हैं, केवल उनका नहीं बनते उनका दास बन जाते हैं। हाँ मंदिर छोड़कर रात के समय जगन्नाथ जी जो है बालक बनकर थाली लेकर खुद आ रहे हैं, अपने सैनिकों को नहीं भेज रहे जाओ भाई हमारा कोई भक्त आया उसको ढूंढ के लो, खुद जा रहे हैं थाली उठाकर नाम पुकार रहे, बंधु मोहंती कहा हो लो, भेष बदल कर बता रहे हैं कि भगवान ने भेजा है मुझे, स्वयं भगवान आके बता रहे हैं उनको। हाँ अर्जुन के सारथी बने वो, शूद्र बने अर्जुन के लिए, रथ चलाया उसका, घोड़ों को हाँ पायर को मसाज किया, गाड़ी को चक्र को तेल दिया उन्होंने, रथ चलाया उनका आदेश का पालन किया, सारथी बने भगवान अर्जुन के। तो केवल भक्त के बनते नहीं वो, भक्त के दास बन जाते, भक्त के हाथ में अपने आप को सौंप देते वो, भक्त के गुलाम बन जाते वो। ऐसी भक्ति का रहस्य है, हमको केवल उनसे जुड़ जाना है। अभी जुड़ना कैसे है इस समय पर, एक ही मार्ग है, कोई यज्ञ नहीं कर सकते हम लोग बड़ा बड़ा, हाँ कोई तपस्या नहीं कर सकते हैं, कोई त्याग नहीं कर सकते हैं, कोई संन्यास ले सकते नहीं है, मुश्किल है बात, सब समय गया वो सत्ययुग का और द्वापर युग का, अभी कलयुग है सब दुर्गुणों से भरा हुआ है। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, उसका नाम पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने ही बताया हुआ सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ तरीका है ये उनके साथ जुड़ जाने का। उन्होंने कहा है कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम को पुकारो उनके साथ जुड़ जाओ। जो हरि नाम को पुकारता है उसको माया और काल छू नहीं सकता है, मृत्यु आएगी, मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा वापस कष्ट भोगने के लिए, जब तक जी रहे हैं तब तक माया आपको छुएगी नहीं, हिम्मत नहीं है माया की, जिसके मुख पे भगवान का नाम है उसको माया छू नहीं सकती। शरीर को कष्ट होने पर भी आत्मा को कष्ट नहीं हो सकता है जब होंठों पर भगवान का नाम सुशोभित होगा। इसलिए हम विनती करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका नाम लेने पर ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थी जीवन, बूढ़ा जीवन, जवान जीवन सब धन्य है, गरीब जीवन, अमीर जीवन, सब प्रकार का जीवन धन्य है उसके अंदर में, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए बस। आप सबको यही विनती है, धन्यवाद, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।